नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन है गायत्री महामंत्र की सामर्थ्य। आज हम उसी के सार को समझने की कोशिश करेंगे।
जी,
ये समझने का प्रयास है कि कैसे ये छोटा सा दिखने वाला मंत्र भारतीय संस्कृति और ज्ञान का, जिसे देव संस्कृति भी कहा गया, उसका आधार है।
बिल्कुल।
गुरुदेव ने इसे बीज मंत्र कहा है। जैसे एक छोटा सा बीज आप देखिए कैसे एक विशाल बरगद बन जाता है, या गंगोत्री से निकली वो पतली सी धार कैसे गंगा सागर तक पहुंचते पहुंचते हजारों धाराओं में फैल जाती है।
हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है।
तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ठीक इसी तरह गायत्री मंत्र देव संस्कृति का मूल स्रोत है, उसका बीज है।
हाँ, बिल्कुल। और देखिए, पूज्य गुरुदेव ये स्पष्ट करते हैं कि अगर हमें भारतीय धर्म और संस्कृति का पूरा सार एक सूत्र रूप में समझना हो ना,
हाँ,
और भागवत जैसी पुस्तकें भी पूज्य गुरुदेव के अनुसार इसी गायत्री मंत्र की व्याख्या या उसका विस्तार है।
अरे वाह, ये तो अद्भुत बात है। मतलब ज्ञान का इतना बड़ा खजाना वो सब इसी छोटे से मंत्र में छिपाए।
हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं, ज्ञान पक्ष भी और विज्ञान पक्ष भी।
अच्छा, विज्ञान पक्ष भी।
हाँ, ज्ञान पक्ष में तो वेद आते हैं जो मनुष्यों को नर से नारायण बनाने का रास्ता दिखाते हैं।
हाँ,
है ना। और पुराणों में जैसे कथा आती है कि ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की प्रेरणा और क्षमता मिली, वो एक तरह से विज्ञान पक्ष हुआ।
हाँ।
और फिर उस सृष्टि को सही दिशा देने का ज्ञान यानी वेद, वो ज्ञान पक्ष हुआ। ये दोनों ही चीजें उन्हें गायत्री उपासना से मिली।
अच्छा।
और ये भी कहा गया है कि गायत्री के जो 24 अक्षर हैं, वो 24 अवतारों के प्रतीक हैं। मतलब हर अक्षर में एक अवतार की शिक्षा, एक शक्ति समाई हुई है।
ये विज्ञान पक्ष वाली बात थोड़ी और स्पष्ट करेंगी, क्या ये आज की साइंस जैसा कुछ है? क्योंकि ये थोड़ा अलग लगता है।
हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, पूज्य गुरुदेव जब यहाँ विज्ञान की बात कर रहे हैं तो उनका मतलब शायद आज की जो लैबोरेटरी वाली साइंस है उससे पूरी तरह नहीं है।
अच्छा।
वेदों में और खास तौर पर अथर्ववेद में जिस विज्ञान का जिक्र है, वो सृष्टि के सूक्ष्म नियमों, पदार्थ और चेतना की जो अंदरूनी शक्तियां हैं उनको समझने और उनको उपयोग करने का विज्ञान था। गुरुदेव तो ये भी संकेत देते हैं कि हो सकता है कि आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो उसका एक छोटा सा हिस्सा भर हो, अभी बहुत कुछ है जो जानना बाकी है।
तो ये जो गहरा ज्ञान और विज्ञान है, ये हमारे जीवन में प्रतीक रूप में कैसे उतरता है? मतलब कोई सिंबलिज्म?
हाँ, इसके दो मुख्य प्रतीक बताए हैं पूज्य गुरुदेव ने, शिखा और सूत्र। सूत्र यानी यज्ञोपवीत।
शिखा और यज्ञोपवीत। हाँ।
शिखा जो हम सिर पर रखते हैं वो ज्ञान शक्ति का ध्वज है, उसे रितंभरा प्रज्ञा कहा गया है, यानी सत्य को सीधे ग्रहण करने वाली बुद्धि। ये गायत्री का चेतन स्वरूप है, ज्ञानमय रूप।
और यज्ञोपवीत।
और यज्ञोपवीत जिसे हम शरीर पर धारण करते हैं, वो गायत्री के कर्म पक्ष का प्रतीक है। मतलब जीवन में गायत्री के सिद्धांतों को उतारने का एक तरह से संकल्प।
इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे, इसमें वो धागे और गांठे भी होती हैं।
जी,
उनका क्या अर्थ है?
जी हाँ, यज्ञोपवीत में 9 धागे होते हैं। माना जाता है कि ये गायत्री मंत्र के 9 शब्दों के प्रतीक हैं।
9 शब्द।
अच्छा। और इसमें 3 ग्रंथियां या गांठे होती हैं। ये 3 व्याहृतियों, भू भुवा स्व का प्रतीक है, यानी जीवन के 3 स्तर, भौतिक, मानसिक और आत्मिक, और उन पर नियंत्रण। और एक होती ब्रह्म ग्रंथि जो ओम यानी पर ब्रह्म का प्रतीक है। और देखिए इसे धारण कैसे करते हैं, कंधे पर जो जिम्मेदारी का प्रतीक है, हृदय के पास आस्था का प्रतीक, और पीठ पर कर्तव्य का भार उठाने का प्रतीक।
सही।
तो ये लगातार हमें अपने आदर्शों और कर्तव्यों की याद दिलाता रहता है।
ये तो बहुत गहरा अर्थ है इन प्रतीकों का। अच्छा, अब आते हैं लाभ पर। आम जीवन में इस साधना से क्या फायदे हो सकते हैं? पूज्य गुरुदेव ने इस बारे में कुछ बताया है?
हाँ, बिल्कुल बताया है। उन्होंने अथर्ववेद का उदाहरण देते हुए 7 मुख्य लाभ गिनाए हैं। इनमें 5 भौतिक हैं और 2 आध्यात्मिक।
7 लाभ कौन कौन से?
देखिए, प्रमुख है आयु, मतलब दीर्घ जीवन, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि ये केवल मंत्र से नहीं बल्कि उसके साथ संयम का जीवन जीने से मिलता है।
हाँ, ये महत्वपूर्ण है।
फिर है प्राण यानी जीवन शक्ति, हिम्मत, साहस। फिर प्रजा, और प्रजा का मतलब सिर्फ संतान नहीं बल्कि समर्थक, सहयोगी, अच्छे साथी।
अच्छा, अनुयायी भी।
हाँ। फिर है कीर्ति यानी अच्छा यश, जो प्रामाणिकता से मिलता है, दिखावे से नहीं। फिर द्रविण यानी धन, लेकिन सिर्फ धन नहीं बल्कि उसे कमाने और सही ढंग से उपयोग करने का विवेक भी।
विवेक जरूरी है।
और फिर दो आध्यात्मिक लाभ है, पावमानी द्विजत्व। इसका मतलब है बाहरी और भीतरी पवित्रता, सिद्धांतों के लिए जीना। इसे एक तरह का दूसरा जन्म, आध्यात्मिक जन्म माना गया है।
द्विजत्व यानी दूसरा जन्म।
हाँ। और सातवां है ब्रह्म वर्चस यानी आत्मिक तेज, रूहानी शक्ति जिसे कह सकते हैं।
ये लाभ तो बहुत ही आकर्षक लगते हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ मंत्र पढ़ने या दोहराने भर से मिल जाते हैं? क्योंकि अक्सर लोग यही सोचते हैं।
बस यहीं पर पूज्य गुरुदेव सबसे अहम, सबसे जरूरी बात कहते हैं।
क्या?
उनके अनुसार गायत्री कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस हमने मंत्र पढ़ा और सारे काम हो गए, सारे लाभ मिल गए। ये कोई बाजीगरी नहीं है।
अच्छा।
एक फिलॉसफी है जीवन की, जिसे गहराई से समझना और अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में उतारना पहली शर्त है।
तो मतलब समझ लिया तो काफी है फिर, जब ध्यान की जरूरत नहीं?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं। दोनों का महत्व है। पूज्य गुरुदेव इसे गायत्री और सावित्री कहते हैं। गायत्री यानी वो तत्व ध्यान, वो थ्योरी जिसे समझना है।
हाँ।
और सावित्री यानी उसका अभ्यास, उसकी प्रैक्टिस, जिसमें जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, ये सब आता है।
अच्छा, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों।
बिल्कुल। जैसे कोई बीमार हो तो दवा भी लेनी पड़ती है और परहेज भी रखना पड़ता है, है ना?
हाँ, सही बात है।
तभी तो पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ होता है। ठीक वैसे ही गायत्री के तत्व ज्ञान को समझना थ्योरी और उसका नियमित अभ्यास करना प्रैक्टिस, ये दोनों मिलकर ही वास्तविक और स्थायी लाभ देते हैं। अगर सिर्फ एक करेंगे तो अधूरा फायदा मिलेगा या शायद नहीं भी मिले। असली प्रमाण तो तभी है जब व्यक्ति की सोच बदले, उसका चरित्र सुधरे, उसके व्यवहार में वो दिव्यता झलकने लगे।
तो मतलब सार ये हुआ कि गायत्री मंत्र सिर्फ कोई पूजा पाठ की विधि नहीं है, ये तो व्यक्तित्व को बदलने का, जीवन को बेहतर और ऊंचा उठाने का एक पूरा विज्ञान और दर्शन है।
एकदम सही कहा आपने। ये हमें साधारण मानवीय कमजोरियों से, जिसे गुरुदेव कई बार नर पशु भी कह देते हैं, उससे ऊपर उठाकर द्विज बनने की प्रेरणा देता है। द्विज मतलब जिसका दूसरा यानी वास्तविक मनुष्य के रूप में जन्म हुआ हो,
जो ज्ञान और कर्म का संतुलन साधता हो।
बिल्कुल।
तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं।
जरूर।
पूज्य गुरुदेव ने कहा कि गायत्री का ज्ञान और अभ्यास, ये दोनों मिलकर ब्रह्म वर्चस यानी आत्मिक शक्ति जगाते हैं। तो क्यों ना हम सब सोचें कि अगर हम गायत्री को केवल एक धार्मिक क्रिया की तरह ना देखें, बल्कि अपने अंदर की इसी भीतरी शक्ति को, इस ब्रह्म वर्चस्व को जगाने की एक मनोवैज्ञानिक, एक दार्शनिक, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देखें, तुम्हारे जीवन में कैसे और क्या बदलाव आ सकते हैं।
बहुत सुंदर विचार है।
इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।
धन्यवाद।